सबक नंबर 60, आयत नंबर 71 से 85, सूरत निसा। लेसन नंबर 60, आयत नंबर 71 to 85, सूरत निसा। तफसीर देखते हैं आयत नंबर 71 से। يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو پھر نکلو جدا جدا فوج بن کر یا سب اکٹھے. یہاں سے آگے کی کچھ آیات تک اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کا اگلا درجہ کیا ہے کہ اب دین حق کی سربلندی کے لیے ضرورت پڑے تو پھر قتال بھی کرنا ہے. اگلی کافی زیادہ آیات جو ہیں وہ ہمیں قتال کا صحیح نظریہ کہ اسلام میں لڑنا کیا ہے، کس مقصد سے ہوگا، کیا طریقہ ہے، اور وہ لوگ جو اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے پیچھے رہنے کی وجوہات کیا ہیں. گو کہ آیات تو قتال فی سبیل اللہ کے رنگ میں ہیں، لیکن ہم چونکہ قتال سے تو نہیں زیادہ منسلک، لیکن ان ساری چیزوں کو ہم ہر اس کام کو جس کو ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کا کوئی بھی کام، مثلا سیکھنا، سکھانا، یا کسی جگہ دین کے نام پہ ہم کوئی مدد کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ٹیلی کریں گے تاکہ ہمیں یہ آیات اپنی آیات لگیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ان کا تو سارا تعلق جنگ سے اور ہم تو جنگ کی طرف نہیں. تو انشاءاللہ ان آیات کو ہم اپنے رنگ میں اپنے حساب سے دیکھیں گے. پہلی بات، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے پکارا گیا، محبت کا انداز ہے. کیا کرو؟ خذو حذرکم، لے لو اپنا بچاؤ. خزرن اور حذرن ایک ہی معنی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چکنا رہنا، یعنی کیئرفل رہو، آنکھیں کھول کے چلو، ہوش میں رہو، ایسے ہی بیوقوف نہ بن کے جیو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور وہ تمہارے سر پہ پہنچ جائے. کیسے لو، کیسے نکلو؟ فن فرو، پس نکلو. نون فارا سے نفرا نکلنے کو کہتے ہیں، اسی سے نفری ہے، اور عموماً جنگ کے لیے نکلنے کو کہتے ہیں. کیسے نکلو؟ ثباتن، ثبات کی صورت میں. سا با تا اس کا روٹ ہے. ثبات کا جو لفظ ہے وہ اس کا واحد ثباتن ہوتا ہے. ثباتن تا مربوطہ جیسے ہوگی نا آخر میں، اور اس کا معنی ہوتا ہے گروہ، یعنی چھوٹے گروہوں میں نکلو، یا پھر اوین فرو جمیعن، یا پھر سب اکٹھے ہو کر نکلو. مطلب کیا ہے کہ تھوڑے ہو تو بھی نکل پڑو، زیادہ ہو تو بھی نکل لو. تھوڑے ہو تو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ زیادہ ہوں گے تو اس کام کو شروع کریں گے، اور زیادہ ہو تو اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم پہلے ہی بہت سے ہیں. دیکھیے کہ سورت نساء جو ہے نا، یہ غزوہ احد اور احزاب کے درمیانی وقت میں نازل ہوئی تھی، یعنی اس غزوہ احد سے لے کر غزوہ خندق کے درمیان کا جو وقت تھا اس میں سورت نساء نازل ہوئی. اس دوران مسلمانوں کو احد کی شکست کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور یاد رکھیے کہ جب ترقی ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ پھر سرپٹ دوڑتا جاتا ہے، اور وہ بہت خوش بھی ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا اثر دکھ رہا ہے. لیکن جب ہرڈلز آتی ہیں، احد کی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر کام کرنے والوں کے بھی حوصلے ٹوٹے ٹوٹے دکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک اور جو اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مخالفین کو افواہیں پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ جو دور تھا نا احد سے خندق کا، یہ افواہوں کا دور تھا. ہر لمحے افواہیں پھیل رہی تھیں، دشمن آنے والا ہے، مسلمان ختم ہو گئے ہیں، حملہ ہو چکا ہے، اب ادھر سے حملہ ہوگا، ادھر ہوگا. اور رہی صحیح کسر ابو سفیان کے اس خطبے نے پوری کر دی جو وہ احد سے واپسی پر کہہ گیا تھا کہ آئندہ ہم پھر جنگ کریں گے. اس سارے حالات میں یہود اور منافقین جو تھے ان کے حوصلے بلند ہو چکے تھے. اسی دوران رجی کا ایک ایسا واقعہ آیا جس میں 70 حفاظ قرآن کو دھوکے کے ساتھ قتل کر دیا گیا. ان دنوں میں ہر وقت مدینہ میں خوف اور ہراس تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن بڑے مشکل تھے کہ ایک رات آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے گھر کا پہرہ دے دے اور میں تھوڑی دیر آرام سے سو جاؤں. हल्की सी आवाज़ भी आती थी ना तो जंग 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 की बात शुरू हो जाती थी। इतना खौफ था। आज के दौर में तो कई सायरन बज जाएंगे, कई अलार्म होंगे, लेकिन उस दौर में हर वक्त इस बात का अंदेशा होता था कि दुश्मन सर पे आ गया तो क्या करेंगे। तो ऐसे वक्त में मुसलमानों को क़यामत तक के लिए एक खूबसूरत सबक सिखाया कि बचाव कर लिया करो, खुजू खिजरकुम, यानी मुसलमान अमन के हाल में भी हथियार जमा कर सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी बन सकते हैं, कुछ मद अपने असलहे के लिए सर्फ कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं। इसी तरह जब वहाँ मैदान जंग में ये सब कर सकते हैं तो ज़िंदगी के हर मैदान में यहाँ सबक मिल गया कि मुसलमान पूरी तैयारी के साथ रहे। जैसा भी जिहाद हो, चाहे वो इल्मी जिहाद हो, अमली जिहाद हो, माशी जिहाद हो, माशर्ती जिहाद हो, या फिर मुल्की सतह पर मुसलमान मुल्कों की सरहदों की हिफाजत करनी है, हमेशा तैयार रहो। खौफजदा होने से कुछ नहीं होता, असल यह है कि काम करो, असबाब को इख्तियार करो, और असबाब का इख्तियार करना जो है ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। और यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को बेदार मगज़ होना सिखा रहे हैं कि कभी मौका हो तो छोटा गिरोह निकले, तन्हा ना निकलो, थोड़े लिखनों को तो निकल पड़ो, और कभी ज़्यादा हो तो भी निकल आओ। लेकिन आम हालात में इस हुक्म पर अमल उन लोगों को मुश्किल हो जाता है जो निफाक दिल में रखते हैं। इसलिए अब अगली चंद आयतों में ऐसे लोगों की बात है जो मुश्किल हालात में साथ छोड़ जाते हैं, जिनको शिकस्त अच्छी नहीं लगती, जिनको इस्लाम की सिर्फ तरक्की अच्छी लगती है। ऐसे लोगों का हाल क्या है कि जब कभी कोई कॉल दी जाए तो क्या करते हैं, वह इन्ना मिनकुम, और बेशक तुम ही में से, गौर कीजिएगा, है मुनाफिक लेकिन कहा मिनकुम जा रहा है, यानी बाहर हार इस्लाम की डोरी में तो पिरोए हुए हैं, दूसरों से तो फिर भी अच्छे हैं ना कि अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं ना, इनके दिलों के अमल इनके अल्लाह पे डाल दो। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कौन, लमई अलबत्ता जो, लयुबत्ती अन्ना जो, अलबत्ता देर करता है। लफ्ज़ युबत्ती अन्ना जो है ये बा तोए हमजा से है। बत्तुन कहते हैं आहिस्तगी इख्तियार करना, स्लो होना। अपने लफ्ज़ों में हम कहते हैं फ़लां बड़ा सुस्त है, बड़ा स्लो है, ये वही लफ्ज़ है। अनएक्टिव होना। बतीयुन कहते हैं सुस्त रफ्तार को, और बत्ता कहते हैं दूसरे को सुस्त कर देना, क्योंकि सुस्ती एक ऐसी बीमारी है कि जो सिर्फ अपने तक नहीं रहती, जो सुस्त होता है ना वह दूसरों को भी सुस्त कर देता है। वद्दुलौ तुदख़िनु फयुदख़िनून, 29वें पारे में आता है कि ये तो चाहते हैं कि तुम थोड़े से सुस्त हो जाओ तो तुम्हें और सुस्त कर लिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दीन के मामलों में बड़ी सुस्ती करते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको दीन के लिए निकलना, भाग भाग के काम नहीं करते, दौड़वाना पड़ता है, पीछे से थपकी देनी पड़ती है, हर थोड़े दिन बाद इनको कोई शौक दिलाना पड़ता है, कोई रग़बत दिलानी पड़ती है, गोया कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, अनएक्टिव है दीन के मामले में, सुस्ती करता है। होता क्या है, फ़ैन असाबत को मुसीबतुन, फिर जब पहुंचती है तुमको, किसको, मुसलमानों को, क्या मुसीबत, कोई मुसीबत, ये कौन सी मुसीबत है, शिकस्त की मुसीबत है, ओहद के मैदान में तकलीफ़ आने की मुसीबत है, या फिर दुनिया के किसी महाज में जहां इस्लाम का कोई काम कर रहे हैं वहां कोई प्रॉब्लम आ गया। पहले आप काम कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था, अब कोई मसला आ गया, गाड़ी चलते चलते रुक गई या ख़राब होने लग गई, तो उस वक्त ये बंदा क्या कहता है, काला, वो कहता है, इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास लगा लीजिए क्योंकि ये इस मुनाफिक का कॉल है, क़द अन अमल्लाहु अलैया, बेशक इनाम किया अल्लाह ने मुझ पर, क्या इनाम है अल्लाह का इस पर, इज़ लम अकुम माहुम शहीदा, जबकि मैं उनके साथ हाजिर नहीं था। ये होती है उल्टी खोपड़ी, जब मुसलमानों को कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए कि जिसमें ओहद की सूरत में जंग करनी पड़े, कत्ल, शहीद होना पड़े, तो बजाय इसके कि ये दिल में हसरत रखता कि मैं वहाँ होता, मुझे भी अल्लाह शहीद कर देता, मैं भी अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होता, ये पीछे रहने को अपनी बहादुरी समझ रहा है। ज़रा सोचिए, एक है शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, हाँ वो तो खुश होते हैं, वो वापस आने पर रोते थे कि हमें तो वहाँ जाके ज़रा अच्छे तरीके से काम करना था, अच्छा यानी अल्लाह के सामने पेश करना था अपना आप, और दूसरा वो है जो घर रह के खुश हो रहा है, और खुश किस पे हो रहा है, जब मुसलमानों पे मुश्किल आई। ये कौन शख्स है, सेल्फ सेंटर्ड, اپنی ذات کے غم میں مرنے والا. ذات اتنی پیاری ہے کہ اپنی ذات بچ گئی, کہتا شکر ہے میں نہیں تھا. یہ نہیں کلمہ اس کی زبان سے نکلا, ہائے اللہ اسلام کا کیا ہوگا. یعنی اسلام مرتا ہے مرے, ڈوبتا ہے ڈوبے, کم ہوتا ہے جائے, بھاڑ میں جائے, اسلام اور اسلام کے تقاضے پیچھے رہے. شکر ہے میں وہاں نہیں تھا جو میں بچ گیا, اللہ نے میرے پہ رحم کر دیا. کس چیز کو اللہ کا انعام کہہ رہا ہے؟ اللہ کے دین سے پیچھے رہنے کو. اب اس کو ذرا جہاد کے ٹیکس سے نکال کے ذرا سوچیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو دین سے پیچھے رہتے ہیں اور اس پہ خوشیاں بھی مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیا بیوقوف ہیں, آپ نے تو اپنی زندگی حرام کی ہوئی ہے, آپ نے تو اپنا آرام, اپنی خوشی, اپنا سب کچھ ختم کیا ہوا ہے. ان کو کیا پتا کہ اس تکلیف میں کتنی خوشی ہے. بظاہر یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کی جان بچ گئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کو بچا کر رکھنا زندگی کی حفاظت نہیں ہے. اصل تو زندگی اس کی بچتی ہے جو اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا دے. دیکھیے کہ زندگی کی حفاظت زندگی دے کر کی جاتی ہے. کچھ لوگ جان دیتے ہیں تو دوسروں کی جان بچ جاتی ہے, اور کچھ خطروں میں سے تو خطرے مول لینے پڑتے ہیں نا. اگر خطرہ اسلام کے اوپر لے لیا جائے اور اپنی جان بچا لی جائے, اسی کا نام نفاق ہے. کچھ لوگ اپنی جان بچا کے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ خود بچ جاتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کو اسلام پیارا ہوگا وہ اسلام پہ پریشان ہوگا, کیا ہو گیا اس کو, اس حال میں کیا ہوگا, اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے. اور دوسری صورت, وَلَئِنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر پہنچ جائے تم کو فضل اللہ کی طرف سے, مراد یہ کہ فتح ہو جائے, مال غنیمت مل جائے, کوئی ایسی خوشی مل جائے اسلام کی وجہ سے, واہ واہ ہونے لگے, تعریف ہو جائے, لوگوں میں بات ہو کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ, تو وہ کہتا ہے. اچھا, یہاں فضل من اللہ میں ایک جملہ اور ایک اور عمل کی بات نوٹ کر لے کہ فضل کوئی مل بھی جاتا ہے نا اسلام کے کسی کام میں, تو ملتا اللہ کی طرف سے. کوشش مسلمان کرتے ہیں, مثلا ہم کوئی کام کرتے ہیں نا فی سبیل اللہ, کوشش ہماری ہے, لیکن اس میں خیر کا ملنا وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ. اس کے بعد اب پھر آپ انورٹڈ کامرس لگا لیجئے, کیا ہوتا ہے اس کا جملہ؟ کالم تکم بئی نقم و بئی نہ مودتن. بڑا مشکل جملہ ہے سمجھنے کے لیے, اور منافق جو ہوتے ہیں نا ویسے بھی بڑی گھما پھرا کے باتیں کرتے ہیں, ٹیڑھے ٹیڑھے جملے بولتے ہیں تاکہ جدھر کا رخ بنتا ہو اس طرف اپنے آپ کو سیٹ کر لے. کیا کہتا ہے؟ کالم تکم بئی نقم و بئی نہ مودتن, اس طرح گویا کہ تم میں اور ان میں دوستی ہی نہ تھی. اچھا, اس جملے کو ٹھہریے, میں نے آپ کو انورٹڈ کاما پہلے لگوا دیے, یہاں میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتی ہوں, تھوڑی سی اور بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی. بات تو اسی میں, لیکن مزید اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. دیکھیے دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں. ولئن اصابکم فضل من اللہ, اور اگر پہنچ جائے تم کو فضل اللہ کی طرف سے, بات واضح ہے. لَيَقُولَنَّ, گویا کہ وہ کہتا ہے. یہاں سے کاننا سے پہلے انورٹڈ کاما نہیں لگائیں, بریکٹ لگائیں, پھر میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں. بریکٹ لگائیں, کالم تکم بینکم و بینہ مودتن, مودتن کے بعد بریکٹ بند کر دیں. گویا کہ نہیں تھی اس کے اور تمہارے درمیان دوستی. یہ منافق کا جملہ نہیں ہے, یہ جملہ ہے بیچ میں بات کو سمجھانے کے لیے. اس کو کہتے ہیں عربی میں جملہ معترضہ, معترضہ اعتراض ہوتا ہے. یہ اس کا ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, پیچھے بھی بات ہو چکی ہے. مثلا آپ کو بات سناتے ہوئے, میں لاہور گئی, میں نے وہاں یہ دیکھا, وہاں یہ ہوا, ساتھ ہی میں پوچھا آپ کبھی گئی ہیں لاہور, اور پھر میں آگے بات شروع کر دوں, تو یہ جو جملہ ہوگا نا آپ گئی ہیں لاہور, یہ جملہ معترضہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی دوستی نہیں تھی, یعنی اسلام کے ناطے ٹوٹ گئے, محبت کے ٹوٹ گئے, یہ اس طرح تم سے بے نیاز ہو گیا گویا کہ کوئی جان پہچان نہیں تھی, اور اس کو تو بس اپنی جان کی پڑ گئی. اب اس کا جملہ ہے, کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی, کاش, کنتماہم, ہوتا ان کے ساتھ, فافوز فوزا عظیما, تو میں کامیاب ہو جاتا بہت بڑی کامیابی کو پانا. یعنی جب اس کے اپنے اندر سستی آئی, جہاد سے پیچھے رہا, اسلام کی خدمت سے پیچھے رہا, مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو گیا, تو ایسے طوطا چشم بن گیا ऐसे लगा कि जैसे इसकी मुसलमानों से कोई दोस्ती नहीं थी, गोया कि वो अजनबी बन गया, इतना बेगाना बन गया कि गोया कि वो तुम्हें पहले से जानता नहीं था, मवद्दा कलफ वुद से है, और फिर कहता है काश मैं साथ होता। अब देखिए इधर किसकी फतह इसको अजीज है, किसकी नुसरत चाहिए इसको, इस्लाम का नाम चाहिए, दीन का गलबा चाहिए, अपनी जात का गलबा चाहिए। अब ये कहने वाला एक शख्स भी हो सकता है और एक जमात और एक गिरोह भी हो सकता है। तो चलिए अपने लफ्जों में इसको समझ लीजिए कि जब किसी मुसलमान की नजरें इस्लाम पे होंगी ना, तो वो इस्लाम को फैलता देखकर खुश होगा। बात है ना, वाजे, लोग इस्लाम की तरफ आए। मिसाल है कि किसी को इस्लाम की तरफ लाना है, नॉन मुस्लिम्स को, आपको पता चल जाता है कि फलां जगह किसी की कोशिश से 100 लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए, जिसकी नजर है ना इस्लाम पे, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह 100 लोग आज उस रास्ते पे चल पड़े हैं कि जहन्नुम के ईंधन बनने से बच जाएंगे। ठीक है, एक दूसरा शख्स है जिसको खार है उस जग से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी कोशिशों से नॉन मुस्लिम मुस्लिम हुए, वो क्या कहेगा, हाँ काश ये मेरे पास आके इस्लाम कबूल करते, मेरा नाम होता, मैं कल कह सकता कि मेरी कोशिशों से मुसलमान हुआ। बताइए कि जिस शख्स ने अपने नाम की वजह से इसको रखा, और तीसरा इससे भी बुरा दर्जा है कि उस पर शक ही करने लगे, ये ऐसे ही कोई इस्लाम कोई नहीं कर रहे, ये अंदर से कोई खाते हैं कुछ और को ले हुए, ये कोई इस्लाम थोड़ी फैला रहे हैं, बस ये फर्क है। सारी बातों से कितना घिनौना किरदार सामने आता है, जो मुनाफिक होता है ना हर जगह अपना नाम पसंद करता है, मेरे नाम का झंडा लगा कि नहीं, मेरे स्लोगन के साथ हुआ है कि नहीं, मेरी अम्ब्रेला के नीचे, मेरी छतरी के नीचे हुआ है, तो सुभान अल्लाह खूब धूम मचाओ, खूब हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो गया, बहुत बेहतर है, और कोई दूसरा कर रहा है जो मेरी अम्ब्रेला से बाहर है तो कह दो कि ये तो कोई काम ही नहीं है, तो ये इस्लाम के मुखलिस नहीं। ऐसी सारी बातें जो नामों को उभारने वाली होंगी, वो इस्लाम की कोई खास दावत नहीं रहती। और एक वक्त आता है कि इंसान बात इस्लाम के लिए शुरू करता है, ये आगाज की बातें होती हैं, हर बंदा एक पर्सन, एक गिरोह, एक जमात, एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी कौमियत, इब्तदा में जो पहला कदम रखते हैं ना, वो अल्लाह के लिए रखते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप अभी से अपनी नियतों पे चेक रखें। पहले दिन जब बंदा है, आप, मैं सबको छोड़ के आपकी बात ही करती हूँ, आप कुरान सीखने आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5वें पारे पे हैं, मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि आपने पहले दिन से लेके अभी तक भी इंशाल्लाह जो भी कोशिश की है ना, वो इसलिए की है कि आपको कुरान समझ आ जाए, अल्लाह की मर्जी मालूम हो जाए, आप सीखें। लेकिन आपका टेस्ट कब बढ़ता जाएगा, जितने आपके पारे बढ़ते जाएंगे। अभी तो ये मकसद था ना कि सीखें, बात पता चले अल्लाह की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर शैतान खा ऐसे तरीके से अंदर आएगा आपके, अल्लाह ताला बचा के रखेगा तो बचेंगे, वरना बड़े झड़ जाते हैं। वो कौन क्या होगा कि तुम्हारे नंबर कितने आए, अच्छा कम आए, अच्छा ज्यादती हुई, मैं नहीं जाता, अच्छा किसी के अच्छे नंबर आएंगे ना, वो कहेगा देखा, बस अब लगता है कि आलिम का लफ्ज़ साथ लगा ही लूँ, आलिमा की डिग्री मिलने वाली है, और ख़ानदान में तो अब खूब रोब डालना शुरू कर दिया। यकीन करें बंदा पसीने पसीने हो जाता है अपनी नीयत को संभालते हुए। किसी आलिम थे कोई, मुझे उसका नाम नहीं याद, कोई इमाम थे, तो कहते हैं मुझे सारी ज़िंदगी जिस चीज़ पे मुश्किल हुई वो अपनी नीयत को संभालने में हुई। तो आप अगर चले थे घर से अल्लाह के दीन को बुलंद करने की नीयत से कुरान सीखने के लिए, तो खुदा के लिए इसको आखिरी दम तक संभाल के रखे, मत इसको इस सुरा पे ले ले कि माशाल्लाह आप तो इल्म वाले हो गए या आप तो बहुत नाम फैल गया, इसको अपने पर हम ले लेते हैं। मिसाल है कि हमने ये काम शुरू किया आपके साथ, आपकी कोशिशों से ये काम हो रहा है, हमारा पहले दिन क्या फोकस था कि आप यहाँ के लोगों को दीन की समझ आ जाए, कुरान पढ़ ले। हर दिन हमें ये चेक करना है, अगर हमारी नज़र इसी पर रहेगी ना कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कितने हिदायत में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद मौजूद है। और अगर फिक्र दूसरी लग जाए कि हमारा नाम कितना ऊंचा हुआ, हमारी कितनी ऑर्गेनाइजेशन बनी, हमें क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ हमारी शोहरत गई, तो वो फिर ज़ात का मसला है। जिस तरह निफाक अफराद में होता है ना, इसी तरह निफाक जमातों में भी आ जाता है, गिरोहों में भी आ जाता है, बड़े बड़े फोरम्स के अंदर भी निफाक आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ सारे किरदार खोल के पेश कर दिए कि नज़रें इस्लाम पे रखो, अगर कुछ अल्लाह से लेना है, बाकी रह गई अपने उसे लेना है तो खूब करो। देखिए काम जिसका होगा उसी से मिलेगा ना, मदद भी उसी की उस आज मदद क्यों नहीं आती इस्लाम वालों पे, इल्ला माशाल्लाह, क्यों नहीं आ रही, उतनी आएगी उसके साथ आएगी जितना बंदा अल्लाह के लिए करेगा। इतने करोड़ों मुसलमान हों और इस्लाम ना फैले, इसलिए कि अब बहुत जगह इस्लाम के नाम पे जिहाद नहीं हो रहे, वो ज़मीन के टुकड़ों के नाम पे जिहाद हो रहे हैं, इसलिए नहीं अल्लाह फतह दे रहा। कितनी जगह इस्लाम का काम हो रहा है लेकिन वो अब नाम का काम हो चुका है। अल्लाह कहते तुम खुद जानो, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, तुम अपने काम खुद करो। अल्लाह की मदद तो तब आती है जब बंदा अपने हाथ उठा के कह दे कि मेरा नाम तो क्या, मुझे भी लोग मिट्टी में डाल दें, मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती, मेरा नाम, मुझे सारा मिट्टी में डाल दें, मुझे गवारा है, लेकिन मैं तेरे दीन को बुलंद करना चाहता हूँ। यही जज्बा अब अगली आयतों में दिया जा रहा है। फरमाए फल युकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरून अलहयात अद्दुनिया बिलआखिरा, बस चाहिए कि लड़ें अल्लाह की राह में वो लोग जो बेचते हैं दुनिया की ज़िंदगी आखरत के बदले। ये काम तो ऐसे ही सरफिरे करेंगे जो दुनिया की ज़िंदगी को पीछे डाल के सिर्फ आखरत के फ़ायदे लेने के लिए काम करेंगे। वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह फयुक्तल औ यग़लिब फसौफ नुतीहि अजरन अज़ीमा, और जो कोई अल्लाह के रास्ते में लड़े फिर मारा जाए या गालिब हो जाए, दोनों बातें बराबर हैं, मारा जाए या गालिब आ जाए, दोनों बराबर हैं। हम क्या करते हैं, फसौफ नुतीहि अजरन अज़ीमा, हम उसको अजर अज़ीम देते हैं। इसमें आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है? कोई लग रहा है कि जो जीत के जंग उनको अल्लाह ताला जन्नत के 100वें दर्जे में पहुंचा रहा है और जो जंग हार के मैदान जंग में मर गए या मगलूब हो गए उनको अल्लाह ताला कहते हैं जाओ फरिश्तों इनको जन्नत के कोई सबसे नीचे वाले दर्जे में डाल दो। सूरत निसा हमें एक जुमला रटवा के जाएगी और वो क्या है कि इस्लाम की नज़र नतायज पे नहीं है। गो के इस्लाम को फ़ायदा हो, दुनिया में अच्छे नतीजे मिले, इससे हिम्मत बनती है, इससे हौसला बढ़ता है, काम करने वाले मज़ीद हिम्मत महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए आखरत के दर्जों पे इसका कोई असर नहीं आता। मिसाल दूंगी कि बदर की जंग में लड़ने वाले सहाबा को अगर आला दर्जे मिले तो ओहद की जंग में हारने वालों के दर्जों में ज़ीरो भी कम नहीं हुआ। हाँ, दुनिया में शिकस्त फतह से नुकसान होता है। हमारा काम क्या है, चल पड़ो, निकल पड़ो, इरादा कर लो, जो जमा पूंजी जान की, माल की, इज्जत की, वक्त की, सेहत की, ताकत की है वो अल्लाह के हवाले दे के इत्मीनान से कब्र में जाके सो जाओ। ना हमारे हाथ में इस्लाम का गलबा, ना हम कर सकते हैं, ना किसी की हिदायत हमारे बस में, ना हम कर सकते हैं। अल्लाह कल ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी कोशिशों से कहाँ कहाँ इस्लाम फैला, अल्लाह ये पूछेगा कि तुम कहाँ कहाँ कोशिश कर सकते थे और तुमने नहीं की। जिस तरह कुछ करने के ऊपर पूछा जाएगा ना, इस तरह जो कर सकते थे और नहीं किया उस पर भी पूछा जाएगा। यानी आप यूं समझ लें कि हम बाज़ाबा थोड़ी सी नेकी करके खुश हो जाते हैं, मसलन हम यहाँ हफ्ते में 4 दिन आके 4-5 घंटे बैठ के खुश हो जाते हैं, अल्लाह खुश करे और इसमें बरकत भी दे, अल्लाह हमें ये तो पूछेगा ये 4 घंटे लगाए, इसका अजर भी देगा, लेकिन हम में से अगर कोई इससे जायद लगा सकता था और उसने खुद पे पिटी फीलिंग करके सेल्फ पिटी का शिकार हुआ, रहम करता रहा, अपने ऊपर तरस खाता रहा, वो नहीं लगाए तो अल्लाह ये ज़रूर पूछेगा कि तुम 4 की बजाय 6 लगा सकते थे, तुमने 2 क्यों नहीं लगाए। बात समझ रहे हैं, इतना बारीक नुक्ता है ये कि जो बंदे को हिला के रख देता है। हम में से हर एक सिर्फ खुद से पूछ सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझसे पूछे और ना कोई आपसे पूछ सकती है कि बताओ जो कर रहे हो उसको तो छोड़ो, जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे। इसके लिए अंदर की अदालत खड़ी है। हर लम्हे अगर हर रात सोते वक्त ये काउंट कर लिया करें ना कि आज क्या किया, क्या किया, क्या किया, नमाजें पढ़ी, फ़र्ज़ पढ़े, सुन्नतें पढ़ी, तो साथ ये भी चेक कर लें कि क्या कर सकती थी नहीं किया, कितनी सुन्नत नमाजें पढ़ सकती थी नहीं पढ़ी, कितनी नफिल नहीं पढ़े, कितने मैं और अच्छे काम कर सकती थी मैंने नहीं किए। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम दोनों काम करोगे तो बचोगे। इसलिए इस दुनिया में अल्लाह ताला तुम्हें इस बात की दावत दे देता है। खुलासा के इन सारी आयात का कि मुनाफिक की सारी नज़र अपनी ऊपर होती है, वो सिर्फ फतह का पुजारी होता है, कामयाबियों का दिल दादा होता है, और उसका हाल क्या होता है कि वो चाहता ये है कि बस मेरा नाम होता रहे, उसका नाम ना हो तो वो पीछे हटने लगता है, सुस्ती करता है, तैयारी नहीं करता, उसका इरादा नहीं होता तो उस दिन उसकी आँख ही नहीं खुलती। कैसे दूसरी आँख खुले, अगर इरादा पक्का होगा तभी खुलेगी, एक आँख खुलेगी फिर बंद होगी, नहीं जाना 9 बजे, चलूँगी 11 बजे, दूसरी आँख भी बंद हो जाती। वल्लाही मैं किसी पर तंस नहीं कर रही, मैं आपको सच बताती हूँ, आज 3 दिन के बाद आए हैं ना, तो वीकेंड के बाद जब भी क्लास होती है ना, तो उस दिन सुबह उठ के क्लास के करने में जहाँ मुश्किल आ रही होती है ना, आदत छूट जाती है, तो वहाँ एक दिल में खुशी हो रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, फिर मौका आ गया कि आज फिर तेरे दीन की खिदमत के लिए चल पड़े। और अगर आप आंख बंद करके देखें ज़रा, आपकी दूसरी कितनी जल्दी बंद होती है। इसलिए अल्लाह उससे वही कराएगा जो वो करेगा। ये तो लोग कहते हैं ना, बहुत काम है, बड़ा काम का बोझ है, ये वही कहता है अभी जिसके अंदर इस बात का एहसास नहीं है कि काम की ज़रूरत कितनी है। कुछ लोग होते हैं वो रस्मी तौर पे खाना पूरी का काम कर लेते हैं, फ़र्ज़ तो पढ़ लेते हैं, और क्या करें, अल्लाह आप तो, और आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? लोग बड़े भोलपन से पूछते हैं, नमाज़ें तो हम पढ़ते हैं, अब आप हमसे और क्या कराना चाहते हैं? हमें समझ नहीं आती आप हमसे चाहते क्या हैं। इसलिए कि आप खुद समझाएं अपने आप को, यकीन करें, मुझे किसी की शक्ल याद आ जाती है, एक मौके पे वो किसी से बात करी करी ना, ये आप लोग हमें क्या बनाना चाहते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो बहरहाल काम वही करेगा, सच्ची बात है, ये काम वही कर सकता है जो यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा, जो सारी दुनिया को समेट समाट के आखिरत के खाते में डाल दे, गुजारे का कर ले, सब्र कर ले, शुक्र कर ले, जो है ले ले, जो नहीं उसको छोड़ दे। इसके अलावा किसी नियत से अगर जाके कोई मैदान जंग में भी मर जाएगा ना, तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। अबू मूसा अल अशरी की एक रिवायत है कि एक शख्स आपके पास आया, कहने लगा कि कोई ऐसा है जो माले गनीमत को पाने के लिए लड़ता है, कोई शोहरत को पाने के लिए लड़ता है, कोई बहादुरी के लिए, और कोई गुस्से में लड़ता है, कोई कौमी हमीयत यानी सिर्फ नेशनैलिटी के बेस पे लड़ता है, बताइए कि इनमें से कौन है जो फी सबील अल्लाह लड़ रहा है? क्या ये सारे अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, अल्लाह के लिए लड़ने वाला वही है जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ता है। बस ये है बात, जब अल्लाह का कलमा बुलंद होगा फिर ही बात बनेगी, वरना नहीं। अब आप देखिए कि हमारा इस वक्त अपने आप को इल्म के साथ जोड़ना, ये भी तो इस वक्त का एक जिहाद है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ भी इसी तरह आती कि हम क्या चाहते हैं। हमारा गोल यही होना चाहिए कि दुनिया में से बातिल का खात्मा हो, आइडियोलॉजी को ख़त्म करें। लोग आइडल्स ख़त्म करना चाहते हैं, आइडल कभी ख़त्म नहीं होते हैं जब तक आइडियोलॉजीज़ को ना बदला जाए। जब तक काफिराना सोच नहीं बदली जाएगी, कुफर नहीं बदलेगा। हमारा मुकाबला काफिर से नहीं है, कुफर से है, और कुफर को तलवार से नहीं मार सकते। काफिर को मारने के लिए तलवार की ज़रूरत है, कुफर को मारने के लिए कलम की ज़रूरत है। इस वक्त आपके हाथों के ये जो कलम है, ये आपके इस्लाम के दिफा की तरफ उठती हुई तलवारों से भी बड़े हैं। इस वक्त मुसलमानों की जो के जहनों पे जो हमले हैं, वो उनके इस्लाम को पल्यूट किए जाते हैं। आपको पता है कि एक ऐसी तस्वीर आम करके भेजी जाती है नेट पे भी और इधर उधर, गारे हिरा की तस्वीर है और उसके दरवाजे पर शैतान बनाया हुआ है, और ये ख्याल दिया जाता है कि यहाँ अल्लाह के नबी के पास फरिश्ता नहीं बल्कि शैतान आता था और वही करता था। ये अबू लहब की बीवी ने भी उस दौर में कहा था कि मोहम्मद, तेरे शैतान ने छोड़ दिया, अभी आया नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी वो हदीसें और आयतें जिनको पढ़ के लोग इस्लाम से दूर हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, उनको इकट्ठा कर कर के लोगों को भेजा जाता है, देखो ये है तुम्हारा इस्लाम। आज अगर हम अंधेरों से लड़ते रहे तो इस्लाह नहीं होगी, हाथ पो मारने पड़ेंगे। एक चिराग जला दें, हम में से हर बंदा अगर हर हफ्ते एक चिराग जलाए, किसी एक बंदे को पकड़ के जिसको इस चीज़ का एहसास दिला दे कि देखो तुम्हारे सारे गमों का इलाज इस किताब में, सिर्फ दूसरे गम नहीं दुनिया के भी गम, औलादों के, माल के, औलाद के, एक बंदे को इस किताब से जोड़ दें, आप देखेंगे इस मुआशरे के अंधेरे दूर होंगे। असल तालीमात मुसलमानों में आम कर दें, अपनी नियतों को खालिस कर लें, तकवा हासिल करें, इससे आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह ताला इस्लाम आएगा ना, हमारी ज़िंदगी में कोई तलवार उठने का मौका आएगा, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आ जाए कि औरतों को भी तलवारें उठानी पड़े। अगर हमने इस वक्त अपने इस काम को कर लिया तो इंशाल्लाह हमारे ही बेटे, हमारे ही शौहर और हमारे ही भाई महफूज रहेंगे जंगों में जाके मरने से। जो माएँ वक्त पे अपने बच्चों की सही तरबियत का फिक्र कर लेती हैं ना, फिर उनको अपने बच्चों को मैदान जंग में नहीं भेजना पड़ता। जो माएँ दीन सीखने के लिए भेज लेती हैं और उसके रास्ते की मुश्किलात को सह लेती हैं ना, तो उनको फिर बड़ी कुर्बानियाँ नहीं सहनी पड़ती। उम्मे मूसा ने चंद दिन के बच्चे को समंदर की मौजों के सपुर्द किया था, ये किस चीज़ की निशानी थी? इस चीज़ की थी कि जब बचपन से कोई माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अल्लाह के हुक्मों को मान लेती है, तो फिर वही बच्चा बाद में मूसा बनके एक पूरी उम्मत का अमीन बन जाता है। तो अल्लाह से दुआ यह है कि हमें दुनिया के मज़े छुड़वा कर आखरत के मज़े लेने वाला बना दें। फ़ख्र किया करें, कभी यहाँ आते हुए ढीले ना आया करें। अगर आपको यहाँ 9 बजे आना है तो 8:30 बजे आप यहाँ आके ऐसे खुश हुआ करें कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं सबसे आगे लग गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके कदमों को अल्लाह के रास्ते में खाक यानी गुबार लग गया, उन कदमों को आग नहीं छुएगी। इतनी बड़ी खुशखबरियाँ किसको मिलेंगी, आप बताइए? घर बैठों को तो नहीं मिलती, सो सो के रहने वालों को तो नहीं मिलती। और अगर हमारी नींद ख़त्म ना हो, हमारे खाने पीने ख़त्म ना हो, तो फिर अल्लाह ताला ने जो भी देना है वो मिलके रहेगा। अल्लाह अकबर। चारों तरफ दुश्मन महाज पे और हम सो रहे हैं और खा रहे हैं और पी रहे हैं, ना हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है इससे। और हम फिर कहते हैं कि पता नहीं मुसलमानों का क्या अल्लाह ताला ने करना है और कैसे करना है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया बेहतरीन साथी चार हैं। चार लोग हैं जो बेहतरीन साथी हैं, और बेहतरीन फौजी दस्ता 400 का है, और बेहतरीन लश्कर 4000 का है। क्या पता चला, छोटी जमात है या बड़ी, थोड़े हैं या ज़्यादा है, इल्म के लिए निकल रहे हैं या जिहाद के निकल रहे हैं। सब के सब को अल्लाह ताला ने अपने रास्ते के लिए चुन लिया। एक मुसलमान की जंग अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए होती है, ना कि आबादियों को बर्बाद करने के लिए। इसलिए फ़ी सबीलिल्लाह की बात है। अब अगली आयतों में, आयत 75 और 76 में एक थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज है, इन दोनों को हम देखेंगे। वमा लकुम, और क्या है तुमको, महसूस करें ज़रा इस वमा लकुम को। कल तो थे ये मक्का वाले, ये उधर वाले, इधर वाले, आज कौन है? ये हम वाले हैं, आज वाले हैं, ये 2000s वाले हैं। क्या? ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, नहीं तुम लड़ते अल्लाह के रास्ते में। वल मुस्तदअफीन मिन अर्रिजाल वन्निसाई वल्विल्दान अल्लज़ीन يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا। और तुमको क्या हो गया है कि नहीं लड़ते अल्लाह की राह में, और इनके वास्ते जो मगलूब हैं मर्द और औरतें और बच्चे, जो कहते हैं ए रब हमारे, हमको निकाल इस बस्ती से कि जालिम है यहाँ के लोग, और कर दे हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती, और कर दे हमारे वास्ते अपने पास से मददगार। कौन? अल्लज़ीना आमनू युकातिलून फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफरू, और जो लोग ईमान वाले हैं पस वो लड़ते हैं अल्लाह के रास्ते में, और जो काफिर हैं वो लड़ते हैं फी सबील तागूत, तागूत यानी शैतान के रास्ते में। तुम क्या करो? फ़कातिलू अवलिया अश्शैतान, पस तुम लड़ाई करो शैतान के हिमायतियों से, और गम न करो इसलिए कि इन नकैद शैतान का दईफा, बेशक शैतान का मकर तो बिल्कुल बोदा है, सुस्त है। इन दो आयात में तारीख के नाते से देखें तो इशारा है उन लोगों की तरफ जो मक्का से हिजरत करके मदीना नहीं आ सके थे। जब हिजरत का हुक्म हुआ हर एक ने कोशिश कर ली, चले गए अपने हिसाब से, लेकिन कुछ लोग कमज़ोर भी थे, बेचारे बूढ़े भी थे, हैंडीकैप्ड भी थे, नहीं आ सके। अब ऐसे लोग मक्का में फंसे हुए थे, और मुसलमान दूर तो जो थे वो तो उनकी पहुंच में नहीं थे, तो नतीजा क्या होता कि इन्हीं के ऊपर जुल्म होता, वहाँ रहने वाले तड़पते। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं और मेरी माँ भी इन्हीं में से थे कि जिनको मक्का में रोक लिया गया था, और उनके ऊपर तरह तरह की मुश्किलात पेश की जाती थी, उन पर जुल्म किए जाते। तो अल्लाह ताला अब यहाँ रग़बत दिलाते उन तमाम लोगों को कि जो वहाँ से निकल चुके, जो आज सुख चैन की नींद सो रहे हैं, जो आराम की नींद सोते हैं, और जिनके घरों में सुकून है, खाना पीना है। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम नहीं निकलना चाहते अल्लाह के रास्ते में? देखो कितने महाज ऐसे हैं कि जहाँ लोग तुम्हारी शक्लें देख रहे हैं, आज भी देखिए तो कहाँ कहाँ मुसलमानों पर तकलीफ़ें। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि वहाँ जा के तो कैदियों को छुड़ाने लगें और हथियार उठा लें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि उनके लिए दुआ करें। वो खुद भी दुआएं करते हैं। कब सच्चे दिल से हमने शऊर के साथ उनके लिए दुआ की? टीवी में खबरें देखते हैं तो उस वक्त कह देते हैं हाय हालात बड़े बुरे हैं, अल्लाह इनके साथ इन पर रहम कर दे, और साथ ही फिर उन्हीं लोगों की पसंदीदा चीज़ें निकाल के देखने और सुनने लग जाते हैं। ना स्टाइल चेंज, ना शादियाँ बदली, ना दावतें बदली, सिर्फ खबरें सुन के तबसरे, अखबार पढ़ के आगे से प्रोपेगंडे, और कुछ उठती बैठती रिवायती बातें, बड़े हालात ख़राब हैं, बड़ा ऐसा है, वो है, दिस एंड दैट करके हम अपने काम में लगते हैं। देखिए, आपके दिल को गम लगाओ, आप हंस सकते हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई बेचैनी की खबर आप सुन लें, आपके अपनों में कोई बहुत ही बड़ा मसला हुआ हो, क्या आप यहाँ जब हंसते हैं तो आपको अपने अंदर आंसू नहीं गिरते दिखते? आपको पता चले कोई आपके मुल्कों में भूखा है, प्यासा है, गरीब है, आपका बहन भाइयों में कोई बड़ा ही दुखी है, क्या आपको अपने टेबल पे 20-10 खाने देख कर खुशी होती है? सिंपल सी बात है, जो गम दिल को लगता है ना, वो गम तो फिर नींदें उड़ा लेता है, फिर वो खाने खाने पे और इस चीज़ों पे नहीं लगाता। असल में अभी हमें मजमूई तौर पे, इज्तमाई तौर पे इस्लाम का गम लगा ही नहीं। सच्ची जो बात है, सिर्फ नाम की बात सुनी हुई है। ऐसे वक्तों में अल्लाह ताला रग़बत दिला रहा, वमा लकुम जो है ना, इसको कहते हैं इस्तफहाम बराए तहरीस। मुश्किल लफ्ज़ है, आसान कर देती हूँ। इस्तफहाम सवाल यानी उठाना, हिर्स जैसे कहते हैं ना, रग़बत दिलाने के लिए। बड़ा खूबसूरत है, जैसे बिल्कुल ऐसी है कि एक है आप किसी को कह दे उठो भाई जल्दी उठो, और दूसरा आप कहते हैं क्या हो गया आप उठ ही नहीं रहे। फ़र्क है ना, रग़बत मोटिवेशन का ये कलम है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कह रहा है कि निकलो, तुम बच गए हो, अब दूसरों को बचा लो कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लम ने फजर की नमाज में रुकू से उठकर फिर कनूते नासला पढ़ी, और उनमें फिर आप दुआ करते थे ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह ऐसे मुस्तदफीन मोमिनों को छुड़ा ले, इनकी मदद कर दे। यहाँ आप देखिए कि जंग की एक और किस्म बताई जा रही है ना, और वो क्या है, मजलूमों को जालिमों के जुल्म से निकालना। पिछली आयतों में हमने जो पढ़ी है ना जंग की किस्म, वो कौन सी थी? अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, कलिमतुल्लाहिल्लिया। ठीक है, तो जंग का एक मकसद इस्लाम में क्या है कि दुनिया में अल्लाह के नाम का बोलबाला हो जाए, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे खड़ जाए, ये पहला मकसद है। इसके लिए जंगें हुई और होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया अल्लाह का मुल्क है, और जिसका मुल्क होता है उसका कानून चलना चाहिए, उसका निफाज होना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने नॉन मुस्लिम मुल्क आपको दिखते हैं ना, असल में अल्लाह के मुल्क में से कुछ हिस्से ग्रैब कर लिए गए हैं, चुरा लिए गए हैं। बात समझ रहे? आपका घर है बड़ा सा, उस पूरे घर पे आपका कब्जा है ना, आप एक कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, दो करें, व्हाट्स एवर, किसी दूसरे को हक पहुंचता है कि देखो इतने कमरे तुम्हारे खाली पड़े हैं, एक कमरे के बाहर अपने नाम की तख्ती लगा के आके बैठ जाए, खबरदार तुमने कहा भाई ये मेरे खाली पड़ा हुआ था मेरा है। दो चार लोग आपके घर के दो तीन कमरों पर कब्जा करें, आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे क्या मतलब है, ये मेरा है, मैं इस्तेमाल करूँ ना करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी को दूँ, मेरी मर्जी। चले अब इस मिसाल को लें कि एक छोटा सा घर तो आपका, उसमें तो आप शेयरिंग नहीं कर सकते, पूरी दुनिया किसकी है? कुल्लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, शाबाश। फिर अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, बादशाह है ना। अब पूरे ग्लोब को तसव्वुर में लाएं, ये किसका है? अल्लाह का। अब अल्लाह कहे तो जब अल्लाह कहे तो उस पर अल्लाह के नाम के झंडे लगने चाहिए ना, नेम प्लेट अल्लाह की होनी चाहिए, मिसाल दे रही हूँ। हाँ, अब आप पूरे ग्लोब को समझ लें, एक एक ही रंग में रंग दें, सब्ज रंग का, मिसाल दे रही हूँ, पूरा अल्लाह का है। लेकिन आप दुनिया में देखते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत सारी नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं, तो क्या फिर वो नॉन मुस्लिम स्टेट्स ऐसी नहीं है कि जैसे आपके घर के साथ कमरे पे किसी और ने अपना नाम लगा दिया? ये है पहला मकसद, मैंने ये बात इसलिए रखी कि खुल के समझ जाएं। अगर किसी नॉन मुस्लिम मुल्क पे, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का से पहले जब सुलह हुदैबिया हुई, तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने नॉन मुस्लिम बादशाहों को दावत के खत क्यों भेजे? क्योंकि अब आप फारिग हो गए थे मक्का वालों से कि अब इधर जंग नहीं होनी, चलें पैगाम बाहर पहुंचाते हैं। क्या कहा? असलम तो असलम, निजाशी को भेजा, हिरकल को भेजा, सारे बादशाहों को भेजा, और दावत दी कि देखो मुसलमान हो जाओ, तुम ऐसे ही हुक्मरान रहोगे, सब तुम्हारा है, तुम्हें अपना भी अजर मिलेगा, रियाया का भी है, नहीं होगा तो फिर हम चढ़ाई करेंगे। अल्लाह के नबी ने अगर किसी तरफ इस नीयत से चढ़ाई की कि कुफर को ख़त्म किया जाए, तो उसमें शर्त क्या थी? अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। अच्छा, अब क्या अब आज ज़बरदस्ती नॉन मुस्लिम मुल्कों को हम ख़त्म कर सकते हैं? मसलन मुसलमान दुनिया के जो हैं वो सारे मिले और नॉन मुस्लिम मुल्कों पे जाके हमला कर दें? नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि ला इकराह फिद दीन। ये तब्दीली कैसे आई? ना अल्लाह के नबी ने ऐसी की, ना दूसरों ने की, आपने सिर्फ उन्हीं काफिर मुल्कों की तरफ हमला किया जिन्होंने मुसलमानों पे चढ़ाई की नीयत की। मसलन तबूक का मौका, गज़वा यरमूक को देख लें, जो गज़वे हुनैन हुई, गज़वे तबुक हुई नहीं, लेकिन उसके लिए पेशबंदी हुई, खबरें आ रही थी कि हरकल अपनी फौजें मुसलमानों की तरफ भेजने वाला है। ठीक है, आपने उन मुल्कों को कैसे फतह कराया? दावत के ज़रिए, इस्लाम की तबलीग के ज़रिए। तलवार से वो काम नहीं होता जो तबलीग से होता है। आपने अपने लोग भेजे, तैयार किए, हज़रत माज को भेजा, यमन की तरफ भेजा, कहा पहले इनको दीन सिखाना और दावत देना, इस्लाम बताना। हज़रत अली को आपने खैबर की तरफ भेजा और कहा कि अली देखो वहाँ जाके एकदम हमला ना करना, पहले लोगों को इस्लाम बताना, तेरी दावत पे अगर वो मुसलमान हो जाए तो वापस आ जाना, और इसका गम ना करना कि खैबर की ज़मीनें नहीं मिली, क्योंकि अगर एक बंदा तेरी तबलीग से, तेरे बताने से इस्लाम की तरफ आ गया तो सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। तरीका आज भी यही है आपके। अच्छा, आज तो ये बात सुन ली कि जितने नॉन मुस्लिम मुल्क हैं ये इलीगल हैं, अब जाके इनको लीगल करते हैं, कैसे करेंगे? आप वहाँ जाके इस्लाम भेजें, अपना इस्लाम पेश करें। आप जब देखिए, इस्लाम का तरीका जो होता है ना, पहले मुआशरा मुसलमान होता है, फिर हकूमत मुसलमान होती है, ये भी लिख लें। अल्लाह के नबी ने जो तरतीब रखी, पहले सोसाइटीज़ को मुस्लिम किया, फ़र्द से काम शुरू किया, एक एक बंदे के अंदर खुदा खफी आई, उसके बाद हकूमत खुद ही मुसलमान हो गई। हम कहते पहले हुकूमत को मुसलमान करो, कानून को मुसलमान करो, ये कभी नहीं होगा। आज भी यही है, मिशन बना ले ज़िंदगी का, अपनी थोड़ी सी जो ज़िंदगी रह गई है इस दिनों को अल्लाह से मांगें और मोहलत मांगें, अल्लाह उम्र दे, अभी तूने क्या करना है हमें मार के, हम मर जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे, तुझे कोई, तू बेनियाज है इससे, हमें मौका दे कि हम कुछ काम करें, ऐसे बीज लग जाएं जहाँ जहाँ पे इस्लाम के मुसलमान काम शुरू करें और उसके बाद फिर इस्लाम फैले। लेकिन गम क्या है कि इस्लाम तो फैलेगा, पहले हमारे मसलक फैलने लगते हैं, पहले दूसरे मसले पैदा शुरू हो जाते हैं, जो बड़ी तकलीफ दह कहानी है। आज हम मुसलमान नॉन मुस्लिम मुल्कों में जितनी कसरत से हैं, ये नहीं हो सकता था कि वहाँ इस्लाम ना आ चुका होता। क्यों नहीं आया? हमारी तफरकेबाजी से। देखिए, इत्तेहाद पामाल हुआ तो थोड़े थोड़े ग्रुप बने ना, और सारे यूनाइट हो जाएंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा ना। तो यहाँ एक चीज़ बताने के बाद अब दूसरी बात बता दी गई, और वो क्या है कि ज़ालिमों को जुल्म से रोकने के लिए भी जिहाद होगा। अब लोग आपको मार रहे हैं तो क्या आप नहीं उठेंगे? क्या ये जुल्म है? एक बच्चा भी अपना दिफा करता है, आप कॉकरोच को मारते हैं ना, वो भी भाग जाता है। आप कहते हैं हम बड़े अमन पसंद हैं, बड़े प्यारे, बड़े नाइस लोग हैं, वी आर सो पीसफुल, आओ हमें मारो, हम तो नहीं हाथ उठाएंगे। कभी ऐसा हुआ? कोई किसी को मारने आए तो क्या हाथ नहीं उठाएगा? ये तो खुदकुशी होगी। तो दूसरी वजह यह है कि जहाँ कोई जुल्म करे फिर हाथ रोको, और अल्लाह ताला यही सिखाता है हमें इन चीज़ों में। पहले यहाँ तक तिलावत सुनते हैं।
या अय्युहल्लज़ीन आमनू खुदू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन औ इन्फिरू जमीअ वइन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फइन असाबतकुम मुसीबतुन قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً